ओम शांति। भारतीय शास्त्रों में एक कहानी का वर्णन है। इस कहानी में एक योगी के जीवन का वर्णन है। किसी घने जंगल में एक तपस्वी तपस्या करता था, अति तेजस्वी, ब्रह्मचर्य के तेज और ओज से परिपूर्ण। घनघोर तपस्या में मगन धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं कम कम होने लगी। धीरे धीरे उसका यहां वहां जाना भी कम होने लगा और वो एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। कई दिन बीते, अल्पाहार से निराहार, एक दिन जंगल के किसी ऋषि की पुत्री वहां से गुजरी और उसने उस सन्यासी को देखा। सन्यासी का ललाट चमक रहा था। ऐसे योगी को देखकर उसके मन में यह भाव उठा कि इनकी सेवा की जाए और वह वहीं रुक गई, क्योंकि वो ऋषि पुत्री थी, तपस्या के नियम वो जानती थी, इसलिए उसने स्वयं को गुप्त ही रखा। गुप्त रीति से उसके लिए जल फल का प्रबंध किया और स्वयं को उसने हमेशा छुपाया। सन्यासी की तपस्या बढ़ रही थी और जैसे अक्सर होता है, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था। इस तरह से जब वो कन्या, वह स्त्री उस तपस्वी की सेवा कर रही थी और यह ध्यान रख रही थी कि वो उसे न देखे, परंतु फिर भी एक दिन सन्यासी की आंख खुली और उसने उस स्त्री को देख लिया, देखा और फिर आंखें बंद कर ली। वह स्त्री घर लौटी और उसे ऐसा लगा कि मैंने उस सन्यासी की तपस्या भंग कर दी, मेरी वजह से उसकी तपस्या में जैसे अवरोध उत्पन्न हुआ है। परंतु उसे सूक्ष्म में थोड़ी खुशी भी थी, उसके अंदर ये भी इच्छा थी सूक्ष्म में कि वो उसे देखे, परंतु आत्मग्लानी से भरा उस ऋषि पुत्र का चित्त और उसने ये सोचा कि अब मुझे यहां नहीं रहना है, और वो उसी रात उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तपस्वी फिर तपस्या में मगन हो गया। संपूर्ण निराहार, उसके शरीर पर एक पहाड़ बन गया, कीड़े मकोड़े सब आ गए। ऐसी तपस्या और ऐसी साधना देखकर इंद्र स्वयं नीचे धरती पर आ गए और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कहो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तपस्वी से पूछा, क्या तुम्हें स्वर्ग की लालसा है? योगी ने कहा, नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि इतनी घनघोर तपस्या किस लिए की जा रही है, स्वर्ग की भी कामना नहीं। इंद्र ने पूछा, क्या तुझे मुक्ति चाहिए? मैं तुम्हें मुक्ति भी दे सकता हूं, मोक्ष। तपस्वी ने कहा, मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं है। इंद्र को आश्चर्य हुआ, ये कैसी तपस्या है, स्वर्ग की कामना नहीं, मोक्ष की कामना नहीं, फिर क्या चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है त्रिलोकी में जो मैं नहीं दे सकता। तुम जो कहोगे, ऐसी विरक्त अवस्था तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। कुछ भी नहीं चाहिए, तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए। ऐसी निस्वार्थ तपस्या, फलाकांक्षा नहीं जिसमें, तुम्हें क्या चाहिए केवल तुम कहो। वो योगी कहता है, वो स्त्री कहाँ है? वो तपस्वी कहता है, वह स्त्री कहाँ है? इच्छाएं इतनी सूक्ष्म है, वासनाएं इतनी सूक्ष्म है कि मन के किसी कोने में वह छिपी बैठी है। सभी इच्छाएं और तृष्णाएं और वासनाओं से मुक्ति, यह संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा है। बहस्तिति पवित्रता है, जिसमें व्यक्ति देह और देह के आकर्षण से परे उठ जाता है। भोग की कामनाएं जहां विलीन हो जाती है, वह अवस्था ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य की परिपूर्ण अवस्था का नाम पवित्रता है। ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, परंतु एक अभिन्न अंग है, एक छोटा सा अंग है पवित्रता का। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, पवित्रता की परिभाषा बहुत ऊंची है, परंतु उस पवित्रता का जो आधार स्तंभ है वो है ब्रह्मचर्य। इस यज्ञ की जो स्थापना हुई और इस यज्ञ का जो आधार भूत स्तंभ है, इस यज्ञ में जो भी यातनाएं सहन करनी पड़ी, इस यज्ञ में जो भी अत्याचार हुए, इस यज्ञ में जो भी हलचल हुई, विरोध हुआ, उपहास उड़ाया गया, निंदा हुई, ग्लानी हुई, अपमान हुआ, केवल और केवल इस एक धारणा के कारण, इस ब्राह्मण जीवन में जन्म लेने के बाद एक रीति से सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है, परंतु उस पवित्रता की क्या गहराई है, उस पवित्रता के कौन से आयाम है सूक्ष्म, वह हमें जानने हैं। इससे पहले कि हम पवित्रता की चर्चा करें, सबसे पहले हमें ब्रह्मचर्य को समझना होगा। ब्रह्मचर्य वह तेज है, वह ओज है, देह में छिपी जो शक्ति है उसका जागरण अर्थात ब्रह्मचर्य। संसार के लोग हैं जिनकी यह शक्ति बही जा रही है, शरीरों को जन्म दे रही है। योगी की वह शक्ति रूपांतरित हो रही है ओज में और तेज में। वह तेज, वह वाणी का आकर्षण, वह मन की अति उच्चतम स्थिति का आधार ब्रह्मचर्य है, वह स्मृति का आधार भी ब्रह्मचर्य है। क्या है ये ब्रह्मचर्य? क्या होगा इस ब्रह्मचर्य से और कैसे इसका पालन किया जाए, और कैसे ये कभी भी खंडित ना हो? कैसी वो कौन सी सूक्ष्म बातें हैं जिससे ब्रह्मचर्य का पालन सहज हो जाए? वो कौन सी युक्तियां हैं जिससे स्वतः ही आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए? उसकी चर्चा हम इस क्लास में आज करेंगे। जैसे कहा, पवित्रता तो बहुत बड़ा भवन है, परंतु उसकी नींव ब्रह्मचर्य है। क्या है ब्रह्मचर्य? संसार कहता है ब्रह्म में स्थित हो जाना ब्रह्मचर्य है। ज्ञान कहता है ब्रह्ममय स्थिति में स्थित हो जाना ब्रह्म है। उस परम लोक, परम धाम में स्थित होना, उस ब्रह्मांड में स्थित होना ब्रह्मचर्य है। एक तो यह परिभाषा है, उस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव करना ब्रह्मचर्य है, परम धाम में जो आत्मा की अनादि स्थिति है। दूसरा, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य, ब्रह्मा का जो आचरण था, जो दिनचर्या थी और रात्रिचर्या थी, उसका अनुगमन करना, उसका पालन करना, ये ब्रह्मचर्य है। कैसी दिनचर्या हो और कैसी रात्रिचर्या हो, और कौन से संकल्प हो और कौन सी वृत्ति हो और कौन सी दृष्टि हो और कौन सी फैंटसी, कल्पनाएं, इमेजिनेशंस हो, उसका संपूर्ण ज्ञान और उसका पालन करना यह ब्रह्मचर्य है। चारों ओर विकारों की आंधी है, विकारों का सुनामी है, हवाओं में वासनाएं हैं, हर टीवी चैनल, हर फिल्म, हर सोशल मीडिया में विकार कूट कूट कर भरे हैं। तथा कथित धार्मिक चलचित्र, धार्मिक धारावाहिक, उसमें भी देहभान, देह अभिमान की ही पराकाष्ठा है। इस संपूर्ण विकारी वातावरण में ब्रह्मचर्य का केवल संकल्प करना भी कितनी बड़ी महानता है, कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी धैर्य इसमें लगता है। बाबा मुरलियों में दो शब्द कहते, एक वीर और एक महावीर। संसार में रहकर, उस वातावरण में रहकर ब्रह्मचर्य की अखंड साधना करना, ये महावीर आत्माओं की निशानी है। ऐसे हम सभी महावीर हैं। केवल ये संकल्प कि मैं महावीर हूं आत्मा में बल भर देता है। केवल संकल्प। चहुओर इस संसार में विकारों को मान्यता प्राप्त है। पाश्चात्य जगत में एक मनोवैज्ञानिक हुआ, सिगमंड फ्राइड, फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। उसने कुछ ऐसे सिद्धांत रख दिए कि सारे संसार ने उन सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया, और पिछले 100-150 वर्ष में यह संसार और ही तमोप्रधान बनता गया। परंतु उसने जो सिद्धांत रखे वो बहुत सूक्ष्म भी है परंतु संपूर्ण सत्य उसमें नहीं है। उसने जो कहा वो सत्य तो है परंतु संपूर्ण सत्य नहीं। मनुष्य मन की उसने खोज की और उसने पाया कि मनुष्य मन में केवल और केवल कामुकता भरी हुई है। गहराई में छोटे बच्चे का आकर्षण मां से ज्यादा है, छोटी बच्ची का आकर्षण पिता से ज्यादा है। इस पर उसने खोज की, संशोधन किया, पर वो जो भी कर रहा था वो शरीर के तल पर कर रहा था और मानसिक तल पर कर रहा था। उसे एक और तल भी है उसकी कोई खबर नहीं थी, एक तीसरा आयाम भी है अध्यात्म का, उसकी उसे कोई खबर ना थी। उसने कहा था कि यदि इस काम वासना को दबाओगे तो विक्षिप्तता उत्पन्न होगी, शरीरों में बीमारियां होगी, मन उदास होगा, डिप्रेशन होगा, मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत साइको एनालिसिस के द्वारा उसने खोजे और जैसे ही उसने खोजे सारे संसार ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया और काम को संपूर्ण मान्यता प्राप्त हुई। वह देश जो उसके विरोध में थे उन्होंने भी इसको स्वीकार किया क्योंकि परिणाम उसने दिखाए। जितने संसार में मैड हाउस है, मेंटल हॉस्पिटल, 70-80% लोग इसी का दमन करने के कारण विक्षिप्त हुए हैं। ये उसकी खोज थी, पर जैसे कहा वो कार्य कर रहा था शरीर के तल पर और मन के तल पर, इद और सुपर ईगो, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके। जन्म जन्म से मनुष्य ने देह को भोगा है। एक समय ऐसा था उसका किसी को पता नहीं, जबकि जो भी हार्मोन्स शरीर में बनते हैं वो बाहर नहीं जाते थे और शरीर के अंदर ही एब्जॉर्ब होते थे। लक्ष्मी और नारायण के जहां उदाहरण है, वो जो अवस्था थी आत्मा की उसका किसी को पता नहीं। लोगों को पता है, संसार को पता है, विज्ञान को पता है केवल उन अवस्थाओं का जो द्वापर से है, और द्वापर से सारा इतिहास कामुकता का इतिहास है। उसका जन्म भी भारत में ही हुआ है, सारे शास्त्र भी भारत में ही लिखे गए हैं विकारों के। न्यूजीलैंड, अफ्रीका, फ्रांस, न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन, यहां नहीं लिखे गए। सबसे पहले विकारों में कौन गया? कौन गया? देवी देवता। दूसरी आत्माएं तो इतनी पवित्र थी कि वो तो अभी भी आई थी ऊपर से, वो तो पवित्र थी और पवित्रता का पालन करने वाली थी। जो आत्माएं सतयुग में हो गई, त्रेता में हो गई, वो तो नीचे नीचे गिर रही थी उस समय। यहां तक कि उनकी पवित्रता में खलल भी हमने ही डाला शायद। जिस जिसने पवित्रता की स्थापना की हमें दुख हुआ होगा उस समय, क्योंकि देवी देवता वाम मार्ग में जा रहे थे और उस समय पवित्र धर्मों की स्थापना हो रही थी। हो सकता है कि क्राइस्ट को सूली चढ़ाने वाले भी यही ब्राह्मण होंगे। तो जन्म जन्म से देहभान में आकर देह का आकर्षण उत्पन्न होने के कारण आत्माएं उसमें इतनी मगन हो गई कि अंदर वो समा गया। भगवान का इस संसार में आना केवल एक ही कार्य के लिए है, वो और कोई दूसरे कार्य करने नहीं आया। क्रोध से मुक्त करने नहीं आया, लोभ से मुक्त करने नहीं आया, केवल एक कार्य, मैं आया हूं पतित से पावन बनाने। पतित अर्थात काम। क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता, मुरलियों में आता है। लोभी को पतित नहीं कहा जाता, तो जन्म जन्म से आत्मा में विकार भर गए और कहा कि कुछ 100-150 साल में उसको मान्यता प्राप्त हुई और जितना मनुष्य उसके पीछे पागल है और विक्षिप्त है, शायद ही कोई जानवर उतना पागल है। किसी दूसरे ग्रह का व्यक्ति यदि इधर आ जाए तो उसे आश्चर्य होगा मनुष्य की इस वृत्ति को देखकर, ये क्या है। तो ये संसार की हालत है। इस हालत में केवल संकल्प भी करना पवित्रता का बहुत बड़ी बात है। पवित्रता की ओर हम आएंगे, पहले ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है। इस संसार में आज तक जितने महान कार्य हुए हैं, महान आत्माओं ने जो कार्य किए हैं, वो अगर एक शक्ति कोई होगी तो ब्रह्मचर्य की शक्ति है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक जगह वर्णन है कि वो एक बार ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे थे। ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया इतनी मोटी मोटी एक होती है, ऐसे 36 वॉल्यूम है उसके खंड, 11वां पढ़ रहे थे। तो उनका एक मित्र आया और उस मित्र ने कहा, कितनी मूर्खता है, इतने सारी किताबें किसने लिख रखी है, ये तो एक जीवन में भी पढ़ना मुश्किल है। तो विवेकानंद उनसे कहते हैं, तुम ये क्या बात कर रहे हो, मेरे अब तक 11 तो पढ़कर हो गए हैं, तुम चाहे तो पूछ सकते हो। और वो मित्र पूछता है उनको उस किताब से, जो जो बातें पूछता है जितनी 11 किताबों से, वो सबका उत्तर देते हैं। वो मित्र पूछता है, ये तुमने कैसे किया, ये तो मनुष्य की ही शक्ति नहीं है। वो कहते हैं, क्यों नहीं है, है। I have not allowed my mind to have a single sexual thought in this life. किसी भी विकार के संकल्प में को मैंने अपने मन में आज तक आने नहीं दिया, और उसी कारण यह शक्ति मेधा बन गई है। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति स्मृति का आधार है, ब्रह्मचर्य की शक्ति स्थापना का आधार है। कोई भी नया कार्य, कोई भी लेखन, कोई भी कला, कोई भी कविता, कोई भी महाकाव्य, कोई भी रचनात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य, उन सभी का आधार ब्रह्मचर्य है। यदि ब्रह्मचर्य की यह धारणा कमजोर है तो मन में नए संकल्प नहीं आएंगे, मन में वह प्रेरणादायी विचार नहीं आएंगे, मन आलस और अलबेलापन में डूबा रहेगा। योग की जो धारा बहनी चाहिए वह नहीं होगी, नींद आएगी योग में। ज्ञान जितना स्मरण और स्मृति में रहना चाहिए वह नहीं रहेगा। क्यों? एंटरटेनमेंट संसार के साधन होंगे, आंतरिक नहीं। कंपनी दूसरे की चाहिए, अकेले नहीं रह सकते। कई लोग ऐसे हैं, अगर उन्हें कहा कि 5 दिन अकेला रहो तो नहीं रह सकते, किसी से बात नहीं करना, असंभव सी बात है। लोग चाहिए, बातें करने के लिए चाहिए। अंदर में बल इतना कम है, अंदर में ऐसी रिक्तता है, खालीपन है, शक्ति का अनुभव नहीं है। उसे आत्मा भरती है व्यक्ति से, साधन से, मनोरंजन से, घूमने फिरने से, परंतु फिर भी अतृप्त ही रहती है। गुजरात में एक बहुत बड़ा डाकू हुआ है कभी, जोगीदास खुमान, इतना घनघोर वो डाकू था कि लोग उससे डरते थे। उसके जीवन में एक वर्णन है, कि आधी रात को वो सोया पड़ा है किसी जंगल में और वहां से आवाज आती है छन छन छन। वो आंखें खोलता है तो देखता है एक स्त्री सामने खड़ी है। वो स्त्री कहती है, मैं तुमसे बहुत तुम्हारे पराक्रम से बहुत प्रभावित हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। वो तो डाकू रहता है, वो उससे कहता है, ये कार्य मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरा जो धंधा है कुछ और है। और इसमें चरित्र परम है, यदि मैं इस बंधनों में फंस जाऊं तो जो मेरा कार्य है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो उसे बहुत समझाती है, वो उसको बहुत समझाता है और कैसे करके वो उसको वहां से निकलवा देता है। उसके बाद उसने कहा है, जब भी वो सोता था दो अंगरक्षक रखता था, किसी शत्रु से मुकाबला करने के लिए नहीं, उसे भय चरित्र हनन का था। और दिखाया है उसी जोगीदास खुमान को एक बार जा रहा है घोड़े पर, सुबह सुबह का समय है 4 बजे का, और एक स्त्री वहां पर फसल काट रही है। वो रुकता है और उस स्त्री से पूछता है कि क्या तुम्हें भय नहीं लगता अकेले इस बिहड़ वन में फसल काटते हुए। वो कहती है कि जब तक हमारा भ्राता जोगीदास इस गांव में है हमें भय किसका। उस स्त्री को यह नहीं पता रहता है कि यही है वो, और यह व्यक्ति यह डाकू अपना सीना ताने हुए वहां से चला जाता है। एक डाकू भी एक ब्रह्मचर्य की साधना से धर्म भ्राता बन जाता है। तो हम आत्माएं जो संसार की सर्वोपरि आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, भगवान ने जिन्हें चुना है, वो यदि इस व्रत का पालन कर ले तो क्या से क्या बन जाएगी। क्या ऐसी ब्रह्मचर्य की साधना हम कर रहे हैं? यदि ब्रह्मचर्य ही खंडन हो रहा है तो उस पवित्रता की, संपूर्ण पवित्रता की मंजिल तक हम कैसे पहुंचेंगे। कार्य केवल इस एक पर ही करना है तो स्वतः ही क्रोध भी विलीन होगा, लोभ भी, मोह भी। उस पवित्रता की ओर चलना है। अपवित्रता के हजारों कारण है इस संसार में, हजारों छेद है, हजारों खिड़कियां खुली है। किसी एक कमरे में 40 खिड़कियां है और एक खिड़की यदि खुली हो और बाहर तूफान हो तो क्या हम सुरक्षित है उस कमरे में? नहीं, उस एक खिड़की से ही तूफान अंदर आएगा। उसी तरह केवल एक कोई मार्ग होगा जहां से इच्छाएं और तृष्णाएं और काम प्रवेश करता है। जब तक हम उसको समझ ना ले, उसका डायग्नोसिस ना कर ले, जैसे डॉक्टर्स होते हैं निदान करते हैं रोग का, अपने रोग का निदान खुद करना है। और जब तक ये निदान हम नहीं करेंगे उससे हम मुक्त भी नहीं हो सकते। अपनी काम वासना को प्रेम की यदि संज्ञा दे रहे तो व्याकरण बदलना होगा। जिसे हमने प्रेम समझकर जिसका पालन और पोषण कर रहे वो शायद प्रेम नहीं है। हमें लग रहा है वो प्रेम है परंतु प्रेम का मुखौटा मात्र है कुछ और। इसलिए केवल एक दिन नहीं, रोज। आज की मुरली में है अटेंशन और चेकिंग, वरदान में दो पहरे चाहिए, बार बार अटेंशन और बार बार पहरा, नहीं तो ये खजाना भी माया चुरा लेगी। 9 खजाने बाबा ने गिनाए हैं, उसमें से एक खजाना पवित्रता है, नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ऐसी नवनिधियों में जो सबसे मुख्य एक खजाना है वो है पवित्रता। यदि अटेंशन नहीं, और एक दिन का अटेंशन नहीं, प्रतिपल अटेंशन, एक दिन ये पॉइंट रिवाइज नहीं करनी है, हर दिन रिवाइज करनी है, हर दिन। एक अव्यक्त वाणी है 69 की, कुमारों से मुलाकात अव्यक्त बाप दादा, जिसमें बाबा कह रहे हैं सभी कुमार ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। ऐसा उसमें बाबा ने कहा है कि सभी कुमार आज से अपने आप से प्रतिज्ञा करो, और बाप दादा से भी प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद हम इस देह को नहीं देखेंगे, केवल एक चमकता हुआ मणि देखेंगे। ये देह क्या है? विष, सांप है। वो जो सांप है वो स्पर्श करता है तब उसका असर होता है, ये जो सांप है इसको देखने मात्र से ही विष अंदर प्रवेश करता है। अगर देखना ही है तो इसके वास्तविक स्वरूप को देखना, क्या है ये अस्थि पंजर। अगर देखना ही है तो ये जो है उसको देखो, मलमूत्र से भरा हुआ यह पिटारा, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, इसके अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं है। कहां है वह सौंदर्य? जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, झुक के चलता है, सारे दांत गिर जाते हैं, कहां है सौंदर्य? सौंदर्य बाहर नहीं, सौंदर्य किसी देह में नहीं, सौंदर्य भ्रम मात्र है, मन का दृष्टि मात्र है वो। कहां है वो सौंदर्य किसी मृत देह में? कहां है सौंदर्य? जाओ जाकर अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में, कैसे पेशेंट्स पड़े हुए हैं, रुग्ण इतने सारे, कहां है सौंदर्य? जाओ जाके देखो कैंसर का पेशेंट और टीबी का पेशेंट। परंतु फिर भी भ्रमित करता है, राजाओं ने अपनी राजाई गवा दी, राजनेताओं ने सत्ता गवा दी इस एक विचार, एक विकार के कारण, केवल इस एक विकार के कारण। जितनी लड़ाइयां काम ने कराई है उतनी शायद ही किसी ने कराई है। द्वापर का इतिहास अब तक का 2500 years, 2500 साल में लगभग 15,000 युद्ध हुए हैं, 15,000 बड़े बड़े विश्व के इतिहास में, संपूर्ण इतिहास में। और तो कितने हुए होंगे, अगर हिसाब लगाओ तो कम से कम केवल कुछ ही दिन है जब युद्ध नहीं हुए, परंतु हां वो दिन भी युद्ध की तैयारी के दिन थे। युद्ध की तैयारी और युद्ध, इसी में मानव इतिहास बटा हुआ है। क्यों हुए युद्ध? क्यों पतन हुआ संसार का? क्यों वह पृथ्वीराज चौहान गिर गया, और क्यों इस भारत पे मुगलों का साम्राज्य चालू हुआ? ऐसे कई सारे प्रसंग है। तो रोज चेकिंग, हर समय चेकिंग, हर समय अटेंशन, हर समय अवेयरनेस, हर समय स्मृति। और कौन दिलाएगा? मुरली के महावाक्य तो आते हैं परंतु यहां से सुने और गए। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। आगे दूसरा पॉइंट, इसका असर होना बंद हो चुका है। बाप आए हैं पवित्रता की स्थापना करने, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, तुम्हारी कुदृष्टि ना हो। सबसे अधिक आंखें धोखा देती है, मुरलियों में इस तरह के बहुत सारे महावाक्य आते हैं। परंतु उस ब्रह्मचर्य की जब तक धारणा नहीं होती पवित्रता तक हम नहीं पहुंच सकते। तो पवित्रता के विषय में ऐसी कुछ 10 बातें हैं जो कैसे पवित्र रहे इस ब्राह्मण जीवन में, इसकी चर्चा हम करेंगे। और उससे पहले ब्रह्मचर्य के खंडन की कुछ बातें हैं। बाबा ने ब्रह्मचर्य की इतनी चर्चा नहीं की है मुरलियों में, बाबा जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो पवित्रता की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य की चर्चा बहुत कम है, पवित्रता की चर्चा है। और पवित्रता तो बहुत ऊंची चीज है, यहां तक कि बाबा ने कहा है व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, साधारण संकल्प भी अपवित्रता है। किसी एक आत्मा के प्रति घृणा ईर्ष्या द्वेष ये भी अपवित्रता है, इतनी ऊंची परिभाषा है। ब्रह्मचर्य की सभी किताबें आपने पढ़ी होगी और उसमें ये कुछ बातें हैं जो भी यहां पर और इस युग में और अब के समय में उतनी ही प्रासंगिक है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, सभी के लिए, क्योंकि ये बातें आत्मा की है। यहां स्त्री होने का और पुरुष होने का कोई लेना देना नहीं है। पुरुषों ने लिखा है स्त्री नरक का द्वार है, परंतु यदि स्त्रियों ने शास्त्र लिखे होते तो क्या लिखती, पुरुष नरक का द्वार है। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, तो यहां स्त्री का और पुरुष का कोई बात नहीं है, यहां बात है आत्मा की और उसकी धारणा होगी। और ये स्त्रीत्व जो है, स्त्रैण स्वभाव जो है, इससे भी ऊपर उठना है, और ये जो पुरुष स्वभाव है, पुरुषत्व जिसको कहे, उससे भी ऊपर उठना है, क्योंकि दोनों ही अभिमान की अवस्था है। एक में अहंकार है सौंदर्य का, तो दूसरे में अहंकार है पौरुष का, परंतु दोनों ही देहभान की ही अवस्था है। और इसी अहंकार को पोषित करते हैं संसार का सिनेमा, संसार के उपन्यास, संसार के नॉवेल्स, ग्रंथ, शास्त्र, मीडिया, सब कुछ। और इसी की चपेट में आज हर युवक, हर स्त्री, हर नारी है। ब्रह्मचर्य के अनुच्छेद कहे हैं 8 शास्त्रों में। पहला दर्शन, वो कौन से स्थान है, कौन सी बातें हैं जिसमें ब्रह्मचर्य खंडित होता है। पहला है देखना, दर्शन। अभी कुछ किया भी नहीं, केवल देखकर अपनी काम वासना की तृप्ति करता है पुरुष, देखकर, देखना। क्या हम देख रहे हैं और क्या नहीं देखना है, ये हमें स्वयं को समझाना है। विकार इन आंखों से प्रवेश करते हैं, वो मिट्टी, मिट्टी का कोई आकर्षण नहीं, उसी को आकार दे दो वो आकर्षण का स्वरूप बन जाती है, है फिर भी वो मिट्टी, फिर भी। और ऐसा नहीं कि मन नहीं जानता है, फिर भी संसार विकारी है, तत्व तमोप्रधान है। शरीर में जो हार्मोन्स है, कहते हैं हार्मोन्स हाईजैक द इंटेलिजेंस, हाईजैक करके ले जाते हैं इंटेलिजेंस को, अपहरण कर देते हैं विवेक का। परंतु क्या हम देखना है और क्या नहीं देखना है, ये हम डिसाइड करें। एक क्लिक कंप्यूटर पर और बुद्धि यहां से वहां, क्लिक पर क्लिक, क्लिक पर क्लिक और क्लिक पर क्लिक, और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जीवन से शूद्र कुमार और शूद्र कुमारी, यहां से वहां जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कितने ही लोग इस ज्ञान को छोड़कर चले गए, क्यों छोड़कर चले गए, ऊपर से कारण बहुत सारे हैं, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, ये तकलीफ देते हैं, वो तकलीफ देते हैं, यहां फ्रॉड है, यहां वो है, यहां ऐसा है, यहां वैसा है, हजारों कारण बाहर है, परंतु कारण एक ही है, अपवित्रता। जो जो इस यज्ञ को छोड़कर गया है आज तक, ओनली वन रीजन, देह का आकर्षण। ऊपर से सजावट कर ली है, छिपाया है स्वयं को, डेकोरेशन किया है ये कारण से, यहां ये है यहां वो अच्छा नहीं है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पार्शियलिटी है, फेवरेटिज्म है, बहुत सारे कारण है। कारण बहुत नहीं, कारण एक ही है, अपवित्रता का आकर्षण। विदेश की किसी एक बड़ी बहन ने अनुभव सुनाया था सेंटर का, एक कुमार जो बहुत अनन्य था, सारा जीवन अर्पित जिसने कर दिया, बड़ी बड़ी सेवाएं जिसने की, बड़ी बड़ी सेवाओं का सूत्रपात जिसने किया यज्ञ में, विदेश में, ऐसा एक कुमार अचानक सेंटर पर आना बंद हो गया, या कभी आता था कभी नहीं आता था। पूछा गया क्यों, कुछ बताया नहीं। बार बार पूछा क्या हुआ, कहता था बाबा डजंट वॉन्ट मी टू वर्क एनी मोर, शायद बाबा चाहता है कि मैं अभी सेवा ना करूं, ऐसे कारण बताता था ऊपर से। फिर भी उसे पूछा गया, एक बहन को उसके साथ बिठाया, बताओ क्या है, हम मदद करेंगे। उसने बताया, क्या बताऊं, सारे दिन भर भाग भाग के सेवा करता हूं, रात में जब थकता हूं तो कंप्यूटर में बैठता हूं, इंटरनेट में बैठता हूं, वीडियोस खोलता हूं, और वो विकार के वीडियो देखते देखते कब 10 और 11 बजते, उसके बाद में नींद नहीं खुलती सुबह, और फिर सेवाओं में मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि वो 3D है, किताब भूल जाएगी, वो नहीं भूलेगा, और आत्मा ने जन जन भोगा है, वो भोग के संस्कार इतने प्रगाढ़ है, एक चिंगारी की आवश्यकता है, एक चित्र, एक पोस्टर, एक क्लिप काफी है भड़काने के लिए, एक मैसेज, एक जोक काफी है। क्या हम देख रहे हैं, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इसका ज्ञान। किसको देख रहे हैं, कल भी कहा था, पापाची वासना नको दाऊ दौड़ा त्याउना आंधड़ाज बरामी। बाइबल में एक जगह लिखा है, इफ यू कास्ट योर आई अपॉन अ वुमन एंड हैव लस्टफुल थॉट यू हैव ऑलरेडी कमिटेड एडल्ट्री इन यूर हार्ट। यदि किसी स्त्री को देखते हो और तुम्हारे मन में ही कामुक उत्पन्न होता है कामुकता, इसका अर्थ एडल्ट्री तुम कर चुके हो। हर धर्म ने पवित्रता को श्रेष्ठ माना है। पहला देखना, क्या आंखें देख रही है उन पर लगाम लगानी है। अभी विकार नहीं है, अभी स्वच्छ है, शुद्ध है, परंतु उत्पन्न होंगे। जब पौधा छोटा होता है तो उसकी रक्षा की जाती है, बड़ा हो जाने दो, बटवृक्ष जब बन जाएगा तो हाथी भी लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु पौधा अभी छोटा है, उसकी रक्षा करनी होगी, साधना करनी होगी। और बिना ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जीवन में अगर साधना नहीं है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं ये ब्रह्मचर्य खंडित होगा, क्योंकि बिना साधना के ब्रह्मचर्य नहीं टिका जा सकता। कितनी भी प्रतिज्ञाएं कर लो, क्या कुछ कर लो, भट्टियों में शादी कराते हैं कुमारों की, कुमार भट्टियों में सम्मानित किया जाता है युगलों को जो पवित्र रह रहे हैं, वहां पर भी विकार उत्पन्न होता है। 3 अवस्थाएं हैं, एक तो पति ज्ञान में चल रहा है, ये युगलों की बातें हैं, पति ज्ञान में है, पत्नी ज्ञान में नहीं है, यहां समस्या बहुत भारी है। दूसरी कंडीशन है, पत्नी ज्ञान में है, पति नहीं है, यहां भी समस्या बहुत है। परंतु तीसरी एक कंडीशन है, वो सबसे खतरनाक है, दोनों ही ज्ञान में है और दोनों में ही विकार का आकर्षण है, तब क्या किया जाए? शत्रु को समझना है, शत्रु क्या है, इतना आसान नहीं है ये शत्रु। महारथी से महारथी, बलवान से बलवान, महावीर से महावीर होकर माया लड़ती है, दबंग से दबंग। जिसने अपने शत्रु को कमजोर समझा, समझ लो उसकी हार हो गई। नेपोलियन की हार क्यों हुई? उसके शत्रु ने उसकी एक कमजोरी जान ली। नेपोलियन जब छोटा था, बच्चा पालने में ही था, एक बिल्ली ने उसे डराया था, उसे बिल्लियों का डर था। बैटल ऑफ वाटरलू 15th century, क्यों हार हुई नेपोलियन की? जबकि वो इतना पराक्रमी था, उसके शत्रु ने उसकी कमजोरी जान ली और बहुत सारी बिल्लियां छोड़ दी उसके ऊपर और वो हार गया। एक कमजोरी, एक विकार की सारी कमजोरियों को लाएगा और गिरा देगा नीचे, देखना। दूसरा, स्पर्श, स्पर्शन। दूसरा है स्पर्श। इसको हाथ लगाओ तो कुछ नहीं हो रहा है, पर यदि ये स्त्री का हाथ है और पुरुष स्पर्श करता है, और पुरुष का हाथ है और स्त्री स्पर्श करता है, तो हलचल होगी, क्योंकि ये भाव अंदर है कि ये क्या है। स्पर्श जनित जो भी सुख है, जहां पर इंद्रिया इंद्रिया से मिल रही है, अंत तो गतवा दुख में परिणित होगी। हजारों स्टडीज हुई है विकार ऊपर, विदेश में, भारत में नहीं। इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया, क्या मिला? फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ गिल्ट, आत्मग्लानी, पावरलेसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कार्यक्षमता का कम हो जाना। स्पर्श। तीसरा, प्रशंसा, अत्यधिक प्रशंसा करना किसी की और प्रभावित हो जाना। लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, पिछले संडे की ही, पांच विकार, उसमें काम, काम का स्वरूप एक्स्ट्रा लव, अंश है। बाबा ने कहा रावण को जला दिया पर अंश अभी भी बाकी है, ये अच्छा है। मुरलियों में आता है, बच्चे कहते हैं बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मुरली चलाती है, तो बाबा का क्या उत्तर है इसके लिए? साकार मुरलियों में आता है ये, अरे बहन अच्छी नहीं है, मुरली अच्छी है। बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। प्रभावित हो जाना, प्रशंसा, अत्याधिक प्रशंसा, यही अच्छा है। इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, इसमें ये गुण है, ये भाषण अच्छा करता है, इसका चिंतन अच्छा है, ये लिखता अच्छा है, इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, ये सेवा अच्छी करती है। दादी जानकी ने एक बार अनुभव सुनाया था। दादी जानकी ने किसी एक भाई का कोर्स किया और ब्रह्मा बाबा के पास गई और बाबा से कहा, बाबा ये भाई का कोर्स कराया है। बाबा सुन रहे थे, बाबा ये भाई बहुत अच्छा है, बाबा ये भाई बहुत धारणा पे चलने वाला है, बाबा इस भाई को ने एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा, तीर उसको लगा या तुमको? प्रभावित हो जाना, अत्याधिक प्रशंसा करना, फिर वो आध्यात्मिक प्रशंसा से सांसारिक प्रशंसा में आता है और सांसारिक प्रशंसा से देह की प्रशंसा शुरू होती है। आध्यात्मिक प्रशंसा, सांसारिक प्रशंसा, गुणों की प्रशंसा, फिर देह कितना सुंदर है, कान कितना सुंदर है और आंख कितनी सुंदर है, दैहिक सौंदर्य। और जहां दैहिक सौंदर्य का प्रशंसा में एक दूसरे को आनंद प्राप्त होता है, वहां विकार की शुरुआत होने में अधिक समय नहीं लगेगा। चौथा संस्कृत में कहते हैं केली अर्थात खेलना, खेलपाल, खेलना। उस खेलने की परिभाषा तो ये जब लिखा गया हजारों सालों पहले तब कुछ और थी, तब शायद शतरंज होगा या और कुछ होगा। अभी तो खेलने की अलग अलग विधियां है और सबसे सूक्ष्मतम खेल है व्हाट्सएप का, इधर से एक मैसेज और उधर से एक मैसेज, एक मैसेज इधर और एक मैसेज उधर, इधर से एक इमेज इधर, इमोटिकॉन जिसको कहते हैं, इमोजीज, वो जो चिन्ह होते हैं ना, दे आर नोन एज इमोजीज। एक इधर से जाता है, एक उधर से जाता है, एक उधर से आता है, एक उधर से आता है, इधर से रूठना, उधर से मनाना, फिर इधर से रूठना, उधर से मनाना, रूठना मनाना, रूठना मनाना, ये भी क्या है? खेल, टाइम, एनर्जी जा रही है उसमें, पैसे इंटरनेट के, ये भी खेल है। स्थूल खेल भी है बहुत सारे, ताश या इस तरह के बहुत सारे। चालू खेल से होता है अंत कहीं और। पांचवा गुह्य भाष्य, प्राइवेट कन्वर्सेशन, प्राइवेट टॉक्स। डर है कोई मैसेज देख ना ले, कहीं डर है कहीं रिकॉर्डिंग ना हो रही है। क्यों डर है? कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, अंधेरी रात और बातें जन्म देती है विकारों को। गुह्य भाष्य, छठवां संकल्प, समीप जाने का संकल्प, एडवांसेस, एकांत में मिलने का संकल्प, सातवां अध्यावसाय, सातवां अध्यावसाय, वास्तव में निकट जाना, और आठवां वास्तविक क्रिया, आठ अनुच्छेद, एट ब्रिक्स ऑफ ब्रह्मचर्य जिसे कहा जाता है। इस युग में भी वो उतने ही प्रासंगिक है, क्योंकि यहीं से माया की शुरुआत होती है। आज यज्ञ में यदि कोई एक विघ्न है तो ये एक ही है, अपवित्रता का, और कोई विघ्न है ही नहीं। बाबा ने मुरलियों में कहा है, बहनों के लिए कभी कहा है, सफेद साड़ी पहनी हो, जटाएं खुली हो, तुम राज ऋषि हो और सेवा होती रहेगी। ऐसी दिव्यता और ऐसी पवित्रता सभी में हो तो सेवा स्वतः होगी। जिस सेवा केंद्र पर जितनी अधिक पवित्रता है, जितने अधिक प्योर वाइब्रेशंस है, वहां सेवाएं स्वतः होती है। किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, चरणों में आकर सब कुछ डाल देंगे। ऐसी अखंडित पवित्रता और ब्रह्मचर्य की साधना, और जहां जहां ब्रह्मचर्य का खंडन होगा वहां दुख होगा, अशांति होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, टाइम वेस्ट होगा, पैसे बर्बाद होंगे, पैशंस होंगे, अनकंट्रोल्ड थॉट्स होंगे, इमोशंस होंगे, फीलिंग्स होगी, रूठना रूसना होगा, इमेजिनेशन की फ्लाइट होगी, स्पिरिचुअल फैंटसीज एंड सेक्सुअल फैंटसीज। एक कल्पना दूसरे कल्पना को जन्म देगी, कल्पना कल्पना को जन्म देगी, अपूर्ण रहेगी, और दुख और फ्रस्ट्रेशन। इसलिए एक संकल्प से उसे समाप्त करना है। एकांगी पगडंडी है, किसी को साथ लेके नहीं चलना है इसमें। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। ये प्रेम की गली है, द पाथ इज नैरो, बाइबल में लिखा है ये जो मार्ग है बहुत छोटा है जिस पे तुम्हें चलना है, एकला चालो रे, वॉक अलोन, एकांगी पकदंडी है, किसी को पकड़ लिया, किसी का साथ लिया, जितने लोगों का साथ लेंगे और जिसको जिसको संसार में साथी बनाएंगे वो सब डुबोने वाले हैं। सत्संग एक है, एक की याद और एक का संग, वह एक ही सहारा और एक ही आधार है, बाकी सब सब डुबोने वाले हैं। डीक्लटर द माइंड, जो किचड़ा भरा है उसको हटाओ वहां से, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, आकर्षणों का, प्रलोभनों का, वासनाओं का, इच्छाओं का, तृष्णा का। क्या करें ऐसे ब्रह्मचर्य के लिए, कुछ उसकी बातें अभी हम चर्चा करेंगे। पहली, श्रेष्ठ लक्ष्य, एक महान लक्ष्य चाहिए तो ही यह साधना हो सकती है, नहीं तो नहीं। बहुत ऊंचा लक्ष्य, सारे जगत को पावन करना है, सारे जगत को पवित्रता का पाठ पढ़ाना है, विलासिता में डूबा हुआ यह समाज इसको वहां से बाहर निकालना है, ऐसे ऊंचे लक्ष्य अगर होंगे तो ही यह साधना हो सकती है, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाना है। इंग्लिश में कहावत है, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। असफलता क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है। क्या अपराध है? लो एम, छोटा लक्ष्य रखना यह अपराध है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, इसलिए महान लक्ष्य। दूसरा, नियम और मर्यादाओं का ज्ञान। हम ये नहीं कह सकते पुलिस वाले से कि मुझे पता नहीं था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। कोई पुलिस अगर पकड़ ले और हम कहे हमें ये नियम का पता ही नहीं था ये वन वे है, तो छोड़ देगा क्या? छोड़ेगा? लॉ इज लॉ, कल की मुरली प्रश्न उत्तर में चीफ जस्टिस का रूप धारण करेगा बाबा। अभी प्राप्तियों का समय है, फिर पश्चाताप का समय होगा। अभी लव स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, फिर धर्मराज होगा। और संसार में सबसे ज्यादा पश्चाताप कौन करेंगे अंत में? संसार की आत्माएं। खून के आंसू कौन बहाएंगे? ब्राह्मण, जिन्हें भगवान मिला, जिन्हें भगवान की श्रीमत समझ में आई, उसके बाद भी पवित्रता के इस व्रत को जिन्होंने तोड़ा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे उनको। इसलिए पुनः पुनः अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ करना है। मर्यादाओं का और नियमों का ज्ञान। तीसरा, शक्तिशाली अमृत वेला। कल भी बाबा ने पूछा था, अमृत वेला शक्तिशाली है? वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, विघ्न विनाशक खुद भी और दूसरे भी, ऐसे मायाचीत। कुमार जीवन में यदि अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं है, कुमारी जीवन में यदि अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं है, तो सारा दिनचर्या शक्तिशाली नहीं हो सकती। कितनी भी सेवा करो, कितना भी भाग दौड़ करो, अहंकार आएगा सेवाओं का, मैंने किया। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, यदि सारे दिन भर कितनी भी भाग दौड़ करो और कितनी भी सेवा करो, यदि सेवाओं में निमित्त भाव नहीं और निर्मल वाणी नहीं है, तो केवल 5% जमा होगा, ओनली 5%। बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम किया और हजारों लोग आए, लाखों आए उसमें, परंतु आंतरिक संघर्ष चल रहा है, भाइयों और बहनों में अंतर में झगड़ा चल रहा है, पद के लिए, राइट्स के लिए, सेवाओं के लिए, और उसके बीच में ये प्रोग्राम हो रहा है, केवल 5%, ओनली 5%। निमित्त भाव नहीं है, मैं कर रहा हूं का भाव है, नियम और मर्यादाओं का ज्ञान और फिर कहा शक्तिशाली अमृत वेला। उसके बाद चौथा सत्संग, सत्संग अर्थात इस वायुमंडल का संघ, संगठन का बल होता है। यदि अकेले में ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो रही है तो ऐसी आत्माओं को ढूंढो जो पवित्रता में स्थित है, बाकी कितने भी अवगुण रहने दो उनमें, परंतु पवित्रता में कुछ आत्माएं ऐसी है इतनी पक्की है, ऐसी आत्माओं का संग। अगला सत्य साहित्य, सत्य साहित्य, श्रेष्ठ साहित्य, मुरलिया, ज्ञान की लिखी हुई किताबें और सारे लेक्चर्स। हम आप सभी से कहेंगे कि रोज कम से कम एक पुरुषार्थ की क्लास सभी ने सुननी है, सुबह एक और हो सके तो शाम को एक, दादियों की, वरिष्ठ भाइयों की, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की क्लासेस, और हो सके तो केवल सुनना नहीं, मुख्य मुख्य पॉइंट्स नोट करना, बार बार उन पॉइंट्स को पढ़ना फिर, और दूसरों को वो सुनाना, तब कहीं जाके ज्ञान के नए संस्कार बनेंगे। ज्ञान के भी संस्कार बनाने हैं, पॉइंट्स लिखना, नोट करना, रिवाइज करना, पढ़ना, दूसरों को सुनाना, ये सब चीजों से ज्ञान के संस्कार बनते हैं। तो सत्य साहित्य, और कौन सा ऐसा साहित्य है जिसे हाथ नहीं लगाना है? भरमार है संसार में नॉवेल से हजारों विकारी वासनाओं को भड़काने वाले, उन सभी से परहेज, उन सभी से दूर। जिस मार्ग को छोड़ दिया अब उस मार्ग पे चलना क्या? यह देह है क्या? किसी एक योगी ने लिखा है, ये देह अर्थात किसी ने उल्टी की है, उसकी उल्टी की उल्टी की उल्टी, एक ने उल्टी की, दूसरे ने खाया, फिर उल्टी की, फिर तीसरे ने खाया, फिर उल्टी की, ऐसा यह देह है। एक व्यक्ति से उसके गुरु ने कहा कि जाओ इस संसार में ऐसी वस्तु लेके आओ जो सबसे अधिक शूद्र है, उससे नीचा कुछ है ही नहीं। वो कई सारी वस्तुओं को ढूंढा उसने, पत्थर को ढूंढा, मिट्टी को ढूंढा, जिस जिस से मिलता था उसने यही कहा कि नहीं, मेरे से भी शूद्र मिट्टी ने कहा, पत्थर ने कहा मिट्टी है, मिट्टी ने कहा और कुछ है, और फिर अंत तो गत्वा एक जगह आया मनुष्य की विष्ठा के पास, ह्यूमन स्टूल, और उसको स्पर्श करने लगा तो उस विष्ठा ने कहा खबरदार, मुझे अगर अपवित्र किया तो, तुमने देह में डालने से पहले मैं बहुत स्वादिष्ट और पवित्र थी, तुम्हारी देह में प्रवेश करने के बाद ही मेरी यह हालत हुई है, तुम्हारा देह मेरे से भी शूद्र है। और इसी देह के पीछे सारे झगड़े हैं, इसी देह की वासना के पीछे सारे झगड़े हैं, इसी देह को पाना चाहता है और इसी को भोगना चाहता है, और क्षणिक वो सुख अपने साथ एक प्रचंड दुख साथ ले आता है, जीवन भर पश्चाताप। सत साहित्य, सत संग, अगला ज्ञान चिंतन, अगला है ज्ञान का चिंतन। केवल मुरली पढ़ना नहीं, केवल सुनना सुनाना नहीं, परंतु उसका मनन करना। कल लंबा विस्तार से हमने इस पर चर्चा की थी, मनन की प्रक्रिया पर, कैसे मनन करे, कब मनन करे, क्या मनन करे, किस तरह से करे, कितना समय करे, उस सब की चर्चा कल हुई थी थोड़ी। ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन, अगला समान का अभ्यास। अभी अपने जो एक्टिविटी की उसमें दो बातें थी, एक स्वमान था, एक आत्मिक दृष्टि थी, आत्मा देखने का अभ्यास, बस आत्मा ही दिखाई दे, इस गर्दन से नीचे कुछ ना दिखाई दे, केवल यहां तख्त पर जो बैठी आत्मा है, मणि जो है केवल उसको देखना है। वो जो सांप है अगर काट दे तो उसे बचाया जा सकता है, वेंटिलेटर पे डालो और बचाओ। ये जो सांप है, बाबा ने क्या कहा है, पांचवी मंजिल से नीचे हड़गुड़ टूट जाती है, चकनाचूर। अगर कोई विकार में जाता है तो 12 मास तक नॉट अलाउड। अव्यक्त साकार मुरलियों में ये सारी चीज है। क्यों इतना कहा गया है? क्योंकि ये एक विकार ही सारे विकारों को जन्म देता है, स्मृति भ्रमित करता है। क्योंकि जितना देहाभिमान काम विकार के लिए चाहिए, उतना क्रोध के लिए नहीं चाहिए, लोभ के लिए नहीं चाहिए, अहंकार के लिए नहीं चाहिए। मैक्सिमम बॉडी कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड फॉर लस्ट, इसके लिए महाशत्रु है। भगवान उस एक ही कार्य के लिए आए, बस और कोई एकच कार्य, पतित को पावन बनाना, समान का अभ्यास, और अगला आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड दिनचर्या। अपनी दिनचर्या को फिक्स करो, ऐसा उसमें कोई टाइम ना हो जिसमें हम खाली बैठे हैं और फिर संकल्प आए ये करूं वो करूं इधर जाऊं उधर जाऊं। दिनचर्या को पहले फिक्स्ड करो। कल भी चर्चा की थी बैलेंस की, भोजन, नींद, एक्सरसाइज। उसके बाद है कर्मयोग में बिजी, स्वयं को बिजी कर देना है। कुमार जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी अच्छी नींद भी आएगी। अगर हार्ड वर्क ही नहीं है, यज्ञ के सारे वरिष्ठ भाइयों के अनुभव सुनो, सूरज भाई से लेकर सबके, कितनी मेहनत की है यज्ञ में, इतने बड़े बड़े पत्थर उठाए हैं हाथों से, वो धुआं उठता था पूरा जब भोजन बनाते थे घंटों तक, बहुत परिश्रम किया है युवा काल में, तब कहीं जाके वाणी में बहुत सामर्थ्य है। बिजी रहना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में एक उदाहरण है कि उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको काम विकार नहीं सताता, क्या काम तुम्हारे पास नहीं आता? वो कहता है रोज आता है, परंतु दरवाजे के बाहर, और बाहर से वो पूछता है अंदर आऊं, मैं कहता हूं मैं अभी बिजी हूं बाद में आना। मैं कभी अपने आप को खाली रखता ही नहीं, 24 आवर्स बिजी, ये करना है वो करना है। क्या सारी 69 से अब तक की अव्यक्त वाणियां पढ़ के हो गई? जो हम कहते हैं हमारे पास कोई काम नहीं है, आज सेवा नहीं है, सेवा नहीं है तो ये इतनी सारी सेवा बाकी है? क्या सारी मुरलियों का चिंतन अध्ययन मनन कर लिया? जो हम कहते हैं आज सेवा नहीं है, हम खाली है, चलो कहीं जाते हैं, चलो कुछ बनाते हैं। अगला भोजन। हम हमेशा उदाहरण देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है ये उदाहरण। बाबा के पास चार थालियां आई, पहली थाली आई मधुबन से भोग लगाने के लिए, दूसरी थाली आई सेंटर से, तीसरी थाली आई गृहस्थ से, और चौथी थाली आई कुमार से। चार थालियां आई भोग की, मधुबन से थाली आई, कमाने वाला कोई और, परचेज करने वाला कोई और, बनाने वाला कोई और, भोग लगाने वाला कोई और, और फिर भोग लगा एक, दूसरा सेंटर से थाली आई, कमाने वाले कोई और, बनाने वाले दूसरे, भोग लगाने वाले शायद वही जो बना रहे हैं, वो दूसरी थाली आई, तीसरा गृहस्थ से थाली आई, कमाने वाला कोई और, बनाने वाला कोई और, भोग लगाने वाला लगभग वही। सेंटर पर कोई दूसरा भी बना भोग लगा सकता है, जरूरी नहीं है कि वही भोग लगाएगा जिसने बनाया है। चौथी थाली बाबा के पास आई एक कुमार की, कमाने वाला खुद वो। खरीदने वाला खुद वो, भोजन बनाने वाला खुद वो, और भोग लगाने वाला खुद वो। अब प्रश्न है, सबसे पहले बाबा कौन सी थाली स्वीकार करेगा? तो कुमारों की जय हो। ऐसा योग युक्त वातावरण में हमें भोजन स्वीकार करना है। खुद बना के जो खाते हैं सर्वोत्तम है। कितनी बार मुरलियों में आया है, कितनी बार खुद बनाते, भीख मांगने की जरूरत नहीं किसी से, खाना दे दो, खुद ही बनाए। नहीं आता है तो सीखे, भगवान मदद करेगा। सब कुछ करते हुए, जॉब करते हुए और सब कुछ करते हुए भी जो कर दिखाए वो महावीर, उस भोजन में जो बल होगा वो संसार के किसी भोजन में नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, पत्र पुष्प और फल भी मुझे कोई दे दे और अनन्य भाव से मुझे स्वीकार कराए तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। वो 56 प्रकार के भोग नहीं खाता। साकार महावाक्य है बाप, 56 प्रकार के भोग स्वीकार नहीं करता। वो गरीबों की सूखी रोटियां स्वीकार करता है, क्योंकि बाप है गरीब निवास, फुल स्टॉप। ये साकार महावाक्य है मुरली के। ऐसी भोजन की धारणा। अगला वैराग, अगला वैराग। वैराग पर एक सेपरेट क्लास आज ही करानी थी, परंतु अभी समय हो रहा है तो शायद शाम को करेंगे। जब तक ऐसा धधकता हुआ वैराग नहीं, तब तक कर्मेंद्रिया चंचल होगी। साकार मुरली आज सुबह की, घर जाना है। यह भाव जब तक प्रगाढ़ नहीं कि यहां मेरा कुछ भी नहीं। एक विदेशी यात्री भारत में आता है, एक सन्यासी से मिलता है और उसकी कुटिया में जाता है और उससे पूछता है कि आपका सामान कहाँ है, कुटिया में कुछ भी नहीं है। वो सन्यासी उस विदेशी से पूछता है, आपका सामान कहाँ है? वो कहता है, मैं विजिटर हूं। सन्यासी कहता है, मैं भी विजिटर हूं, मैं भी आगंतक हूं, मैं भी मेहमान हूं इस संसार में, मैं क्यों कोई सामान रखूं? वैराग, राग नहीं जहां वह स्थिति, वैराग की स्थिति। जब ऐसा वैराग होगा तब कहीं वो ब्रह्मचर्य की साधना होगी, और तब कहीं ये सारे जो बातें ब्रह्मचर्य की, जो बातें कही खंडन की, वह नहीं होगी। अगला है, कितने हुए, लिख रहा है कोई? 10। अगला है, रात को सोने की विधि। रात को सोने की विधि। कुमार आते हैं कहते हैं दुस्वप्न आते हैं, विकार के स्वप्न आते हैं, क्या करें? जीवन ऊर्जा बही जा रही है, क्या करें? शायद सोने की विधि गलत है, शायद किस भाव से सो रहे, देहभान में सो रहे, देहभान की बातें करते हुए सो रहे, देहभान की चीजें वस्तुएं चलचित्र देखते हुए सो रहे, शायद देहभान का चिंतन करते हुए सो रहे हैं। इसके लिए यह हो रहा है। स्वप्न में वही दिखेगा जो व्यक्ति ने दिन भर दबाया है। जबरदस्ती उपवास करो तो रात में भोजन ही दिखता है। जहां जहां सेपरेशन है, हमारे पास कोई एक बहन आई थी, उसको दूसरी बहन लेके आई थी और कहा इसको एक बीमारी है। क्या? तो जब भी मधुबन आती है एक एक घंटे में भूख लगती है इसको। दो दो घंटे में, एक एक घंटे में भूख, कुछ ना चाहिए उसको खाने के लिए, इसकी कोई दवाई? ऐसा क्यों? बाद में हमें पता चला शायद सेवा केंद्र पर इतना स्ट्रिक्ट नियम है कि उसको कोई खाने नहीं देता है, हर चीज गिनी हुई है। दमन जहां हुआ वहां पर मार्ग ढूंढता है मन, बीमारियों के रूप में प्रकट होता है। दमन नहीं, रूपांतरण। एक मार्ग भोग का है, एक मार्ग त्याग का है। सन्यासियों ने त्याग का मार्ग चुना, भोग का मार्ग गृहस्थियों ने चुना, दोनों ही गलत है। जो भागा वो उसका ही शीर्षासन है, क्योंकि भाग कर भी वही चिंतन कर रहा है, दोनों भी वही चिंतन कर रहे हैं। एक तरफ सन्यासी, एक तरफ गृहस्थी, वह भी उसी स्त्री का चिंतन कर रहा है और भागने वाला भी उसी स्त्री का चिंतन कर रहा है। मार्ग बाबा ने एक नया मार्ग बनाया है, उस मार्ग का नाम है प्रेममयी ज्ञानमयी समझ। जब समझ में आ गया जो व्यर्थ है वो स्वतः ही छूट गया। रूपांतरण, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, दिव्यकरण, डिवाइनाइजेशन, ये मार्ग है। सत्य को देख लेना, ये देह जो है जैसा है देख लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस देह के दोष को देखना, इस संसार के दोष को देखना और उससे अलिप्त और विरक्त हो जाना, यह मार्ग है। व्यर्थता को जान लेना किसी चीज की। एक स्मोकिंग करने वाला जब ये जान लेता है कि स्मोकिंग कितनी व्यर्थ है, वो स्वतः ही छूट जाती है, नहीं तो नहीं छूट पाती। संपूर्ण व्यर्थता के ज्ञान, संपूर्ण संसार के असार होने का ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। भागना नहीं, पलायन नहीं, एस्केपिज्म नहीं। एस्केप करोगे, भागोगे तो स्वप्न में भी वही सताएगा। दिखाया है शास्त्रों में, ऋषि तपस्या कर रहे, अप्सराएं आ रही है, यह किस चीज का गायन है? क्या ऐसा कोई स्वर्ग है जहां अप्सराएं हैं? कोई स्वर्ग नहीं और कोई अप्सराएं नहीं, वो उनके ही मन में दबी हुई वासनाएं हैं जो कि रूप धारण कर रही है, प्रोजेक्शन हो रहा है, संप्रेषण प्रोजेक्ट कर रही है इमेजेस, सबकॉन्शियस माइंड की इमेज, सबकॉन्शियस माइंड की सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड डिजायर्स, वो दमित भाव, वो दमित वासना ही स्त्री का रूप धारण करके बाहर आ रही है। इसके लिए स्वयं की चेकिंग और स्वयं का टेंशन और स्वयं को इससे ऊपर ले चलना। कैसे हम सो रहे हैं, किस भाव से सो रहे हैं, कौन सा तपस्या करके सो रहे हैं? बस बाबा ने एक मुरली में यह भी कहा है, थके हुए थे आए और लेट गए, यह भी आलस्य है। बच्चे भले भूल जाए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करना, अभी अभी मुरली चली थी अव्यक्तवाणी एक दो साल में, बाप नहीं भूलते, वो साजन भी है। तो ऐसी कुछ ये विधियां है, पवित्रता की कहो या ब्रह्मचर्य की कहो, इन सभी को अपनाकर, एक को नहीं सभी को अपनाकर अपने जीवन को ऊंचा बनाना है। ओम शांति।